الحمد لله بكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في مقام آخر الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے، جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے. کسی شاعر نے کہا: زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننّا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے. یا مجھگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. کہ زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ، ایک جھونکا آتا ہے چراغ بجھ جاتا ہے. یا پھر رونے والے کی پلکوں پہ جو آنسو ہوتا ہے وہ پلک چھپکنے کا محتاج ہوتا ہے، پلک چھپکی اور آنسو زمین پہ گر گیا. اسی طرح انسان کا معاملہ ہے، ایک لمحہ پہلے زندہ ہوتا ہے اور ایک لمحے کے بعد اسے موت آ جاتی ہے. ہماری دنیا کی زندگی کا وقفہ بہت تھوڑا ہے، چاہے وہ 100 سال ہی کیوں نہ ہو. زندگی انسان کی ہے مانند مرغے بینوا. زندگی انسان کی ہے مانند مرغے بینوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا. جیسے پرندے کی مثال ہوتی ہے کہ وہ اڑ کر آتا ہے، تھوڑی دیر درخت پر بیٹھتا ہے، چہچہانے کے بعد واپس چلا جاتا ہے. ہم بھی اس دنیا کے درخت پر آئے، تھوڑی دیر اپنی زندگی میں ہم یہاں چہچہائیں گے، اعمال کریں گے اور بالآخر ہمیں آخرت کی طرف لوٹ جانا ہے. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز. اس لیے بچہ جب آتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے. اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب جماعت کھڑے ہونے میں جتنا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وہ تیری زندگی ہے. جیسے ہی تو مرے گا تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، بناتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے زندگی معاملات کو. بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر. اللہ تعالیٰ نقشے بناتا ہے اور پھر خود ہی بگاڑ دیتا ہے، کیونکہ بندے کو بالآخر اپنی اصل منزل کی طرف لوٹنا ہے، جو موت ہے. موت اٹل ہے، ایک دن انسان کو آ کے رہنی ہے. انسان کا رزق بھی پیچھا کرتا ہے، انسان کی موت بھی پیچھا کرتی ہے. اور موت ایسا پیچھا کرتی ہے کہ بالآخر ایک دن بندے کو دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی دنیا میں کوئی مرد ایسا نہیں بنایا کہ جو ہمیشہ رہے. آپ غور کیجئے، اگر موت کو دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو موت نہ آتی، اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو موت نہ آتی. अगर मौत को हुस्न जमाल के ज़रिए से टाला जा सकता तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मौत ना आती, अगर मौत को अख़लाक़ के अज़ीमा के ज़रिए से टाला जा सकता तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मौत ना आती, अगर मौत को मोहब्बतों के ज़रिए से टाला जा सकता, कोई माँ अपनी आँखों के सामने जवान बेटे को न मरने देती, अगर माँ को अगर वफाओं के ज़रिए से मौत को टाला जा सकता, कोई बीवी अपनी आँखों के सामने जवान खामिन को न मरने देती। मगर हमने तो ऐसे मंजर दुनिया में देखे हैं, जवान बेटा लेटा हुआ होता है और बूढ़ी माँ अपने थरकते हाथों के साथ उस आँखों को बंद कर रही होती है। उस माँ ने कभी सोचा भी ना था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि मैं खुद अपने बेटे की आँखें बंद करूँगी। मगर अल्लाह का ये बनाया हुआ निज़ाम ऐसा है कि इंसान को इसके सामने सरे तस्लीम खम करने के सिवा चारा नहीं। इसका एक ही तरीका है कि इंसान अपनी मौत के लिए तैयार रहे। चुनाचे चंद नौजवान नबी इस्लाम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अकिया सुन्नास वह जमुन्नास, इंसानों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद और सबसे ज़्यादा समझदार कौन है? नबी इस्लाम ने फरमाया कि अक्सर हम जिक्र लिल मौत, वो जो मौत को कसरत के साथ याद करता हो, वह अक्सर हम इस्तेदाद लिल मौत, और जो मौत की कसरत के साथ तैयारी करता हो, उलाइक अलकियास, ये हैं अक्लमंद लोग, ज़हबू बे शरफ़ दुनिया व करामत आखिरा, दुनिया की शराफत और आखिरत की बुजुर्गी यही ले गए। चुनाचे मौत की तैयारी कोई दंड बैठ के निकालने का नाम नहीं है, कोई वर्जिश करने का नाम नहीं है, कोई वर्कआउट करने का नाम नहीं है। मौत की तैयारी यह है कि इंसान अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले और नेकी भरी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे और अपने अखलाक अच्छे करे, अगर किसी का दिल दुखा है तो उससे माफ़ी मांगे। ऐसी ज़िंदगी हो कि हज़रत ख्वाजा उद्दीन वाले सिद्दीकी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि क़यामत के दिन कोई बंदा गिरेबान पकड़ने वाला ना हो। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी को ऐसे बना लिया, जवान बेटे भी थे, उसको दुश्मनों ने कत्ल करके नहर में डाल दिया तो उसकी लाश नहर के पानी के अंदर रही और फूल गई। जब पता चला, पुलिस ने ना लाश को पकड़ा, तो लाश इतनी फूली हुई थी कि पता भी नहीं चलता था कि ये शक्ल मर्द की है या औरत की है, शिनाख्त होती नहीं थी। अब जब शिनाख्त होती नहीं थी तो पुलिस ने करीब गांव के इमाम साहब को कहा कि जो भी है मुसलमान है, आप इसको नहला धुला कर दफना दें, केस खुलेगा तो फिर बाद में देखी जाएगी। चुनाचे इमाम साहब ने उसको नहला दिया, लेकिन जब कफ़न देने का वक्त आ गया तो इमाम साहब ने कहा, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं कि मैं कफ़न ख़रीद सकूं, देहातों में खाने पीने की चीज़ें होती हैं लेकिन कैश शहर में नहीं होता कि इंसान ख़र्च कर सके। तो बस्ती वालों ने कहा कि अच्छा, फिर इसके लिए चंदा कर लो। चुनाचे मस्जिद में ऐलान हुआ, लोगों, लावारिस नाश है, उसको कफ़न देना है, उसके लिए चंदा लाओ। कोई एक रुपया लाया, कोई दो रुपये लाया, कोई पाँच रुपया लाए। एक घंटा ऐलान होता रहा और एक घंटे ऐलान के बाद पैसे पूरे हुए, कफन ख़रीदा गया और उस नावारिस लाश को कफना कर बिलाखिर दफना दिया गया। 3 महीने के बाद जब केस की हकीकत खुली तो पता चला कि वो बंदा अपने इलाके का नंबरदार था, कई करोड़ रुपया उसके बैंक अकाउंट में था और 4 मुरब्बे ज़मीन का मालिक था और ऊपर किन्नू के बाग लगे हुए थे, 4 जवान बेटे थे। उस बंदे ने ज़िंदगी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं जब मरूंगा तो चंदे का कफन लेके दुनिया से जाऊंगा। तो मौत बरहक है, कफन के मिलने में शक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मौत की तकलीफ़ इंसान को कैंचियों से कुतर देने से ज़्यादा सख्त होती है, इंसान को मौत की तकलीफ़ देग में भून देने से ज़्यादा सख्त होती है। चुनाचे एक अल्लाह के वली फौत हुए तो उनसे पूछा गया, जी कि आपने मौत को कैसे पाया? कहने लगे, ऐसे लगता था जैसे जिंदा बकरी है जिसकी खाल उतारी जा रही है। आप ख़ुद गौर करें, अगर किचन में काम करते हुए कभी छोटी सी उंगली जल जाए तो कितनी दर्द होती है। ये दर्द क्यों होती है? कि जो जिस्म के सेल जले उनमें से रूह बाकी जिस्म के अंदर सिमट गई। अगर थोड़े से हिस्से से रूह सिमट जाए तो इतनी तकलीफ़ है जब पूरे जिस्म से रूंट सिमटेगी तो फिर क्या हाल होगा। हाँ, एक तरीका है इन तकालीफ से बचने का, और वो तरीका है कि इंसान गुनाहों से बच के ज़िंदगी गुजारे, नेकी की ज़िंदगी गुजारे, दीन की खिदमत वाली ज़िंदगी गुजारे। चुनाचे हदीस मुबारका में आता है कि जब किसी मोमिन की मौत आती है तो मलकुल मौत अपने साथ फरिश्तों की एक जमात को लेकर आते हैं और जन्नत का एक रुमाल लेकर आते हैं और वो उसके सीने पर रख देते हैं। ये एनस्थीजिया है जो जन्नत का एनस्थीजिया उस बंदे को मिल रहा है ताकि उसको तकलीफ ही ना हो ऑपरेशन होने की, और फिर उसकी रूह को निकालते हैं इस तरह कि जिस तरह जिसम मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है। ऐसे अल्लाह वालों को मौत की तकलीफ नहीं महसूस होती, बल्कि हदीस पाक में तो आता है कि जो शहीद होते हैं उनको तो मौत के वक्त मज़ा आता है अपनी रूह के निकलने का। चुनाचे हदीस पाक में है कि जन्नत में अल्लाह ताला जन्नती उसे पूछेंगे कि क्या तुम्हें किसी नेमत की ज़रूरत है, सब कहेंगे या अल्लाह आपने तो हमें छोटी सी खुदाई दे दी, जो सोचते हैं वो हमें मिल जाता है, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक उनमें से शहीद होगा, वो हाथ खड़ा करेगा, या अल्लाह मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह पूछेंगे भाई तुझे जन्नत में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसने कहा दुनिया की वो चीज़ याद आती है कि जब मुझे आपके रास्ते में शहीद किया गया था तो मेरी रूह निकालते हुए जो मुझे लुत्फ आया था वो मज़ा मुझे जन्नत में भी नहीं आ रहा। मेरा दिल चाहता है अल्लाह तू मुझे ज़िंदा कर, सुम्मा अहया सुम्मा उक्तल, मैं ज़िंदा हूँ फिर मुझे कत्ल किया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, और वो मुझे मज़ा आता रहे अपनी जान अल्लाह के रास्ते में पेश करने का। तो अल्लाह वालों को मौत के वक्त यूँ लज्जत मिलती है। चुनाचे पिछले चंद दिनों ने हमारे करीब में एक वाक़या पेश आया। हमारी एक मौलिमा जो हमारे अपने जामे में पढ़ाती थी उसकी वफ़ात हो गई। उम्र तो उसकी 36-37 साल ही थी, मगर तकरीबन 30 साल उसने हमारे जामे में पढ़ाया। बाजी जान समैया उनका नाम था। सारा दिन कुरान पढ़ती थी, पढ़ाती थी और कुरान के गुलशन में ज़िंदगी गुजारती थी, बल्कि उसकी तो रिहाइश ही मदरसे के अंदर थी। अभी चंद दिन ही ये ज़ख़म हमें लगा था कि एक और वाक़या पेश आ गया। हमारी ई महद की एक मल्लिमा जिसका नाम महवेश था, महवेश बाजी, अचानक उसकी वफ़ात हो गई। अल्लाह की शान देखें कि उम्मीद से थी और बच्चे की विलादत का वक्त करीब था और कोई ख़ास वजह भी नहीं बनी कि हार्ट अटैक हुआ हो या फलां हुआ हो या फलां हुआ हो, घर में ही थी। एक घंटा पहले तक तो वो अपनी बहन से बात करती रही हैं और अपने पीरियड पढ़ाती रही हैं। ये नहीं दिन जाना, उस दिन भी उसने फुल क्लासें ली। अब आप बताइए, एक जवान बच्ची है, दो छोटे छोटे बच्चे भी उसके पास हैं, एक बच्चा पेट में है, और फिर वो दीन का काम कर रही है, लगी हुई है। उसने पूरे ईमाद का लोड अपने ऊपर उठाया हुआ था। हम तो उसकी हिम्मत पे हैरान हैं, उसने कितनी अच्छी मौत की तैयारी की और अपने अल्लाह को मनाया कि अपने अल्लाह को राज़ी करके दुनिया से चली गई। मैंने जब उसकी वफ़ात की खबर सुनी तो मेरे लिए तो एक सकते का आलम था और मेरी ज़बान से निकला बट मार्वलस एंडिंग। अल्लाह ने उसको कितनी प्यारी मौत अता फरमाई। फिर मैंने कहा अपनी वाइफ को कि अनदर सक्सेस स्टोरी, कि हमारी जमात की मौलिमात में एक और सक्सेस स्टोरी है जो अल्लाह ने हमें अपनी आंखों के सामने दिखा दी। अल्लाह ताला उसकी मेहनत को कबूल करे, और जिस मोहब्बत और लगन के साथ उसने दीन का काम किया, खाना पीना बच्चे घर के काम ये सब कुछ अब उसके ज़िम्मे था। उसको कोई हेल्प नहीं थी, घर में नौकरानियाँ नहीं थीं, सारे काम खुद करती थी, जवान खामिंद भी है, फिर इसके बावजूद दीन का इतना काम, इतना काम। यूँ लगता है कि अल्लाह ने उसके रास्ते हमवार कर दिए थे कि मेरी बंदी तेरी मोहलत थोड़ी है, तू जल्दी जल्दी अपने सारे काम समेट ले और मेरे पास आ जा। चुनाचे हदीस मुबारका में आता है कि मन अहब लिका अल्लाह अहब अल्लाह लिकाहू, जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह उससे मुलाकात करके खुश हो जाते हैं। और एक हदीस पाक में आता है कि तोहफतुल मोमिन अल मौत, कि मोमिन के लिए मौत एक तोहफ़ा होती है कि उसकी अल्लाह से मुलाकात हो जाती है, अल्लाह के पास वो चला जाता है। तुम इसमें कोई शक नहीं कि महवेश बाजी अल्लाह के पास तो चली गई, लेकिन हमारे दिल बड़े गमजदा हैं, इसलिए कि करीब रहते हुए जो दिलों में मोहब्बतें होती हैं तो इंसान उन मोहब्बतों की वजह से मिस करता है, इंसान उन मोहब्बतों की वजह से उदास हो जाता है। हमारी आंखों में आंसू हैं, दिल हमारे गमजदा हैं, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उनको इतनी अच्छी मौत अता फरमाई। हमारे जामिया की तालिबात को जब पता चला कि इस तरह एक और मौलमा फौत हो गई, तो मुझे थोड़ी देर पहले बताया गया कि उन्होंने 107 कुरान मजीद उनके लिए पढ़े इसाले सवाब के लिए, और 7 लाख मरतबा कलमे का विर्द किया। सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी मौत अगर आनी हो तो बंदा तो फिर मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहते हैं कि वो एक मकबरा है जो दुनिया में अजूबा है, इंडिया के अंदर है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, ताजमहल। उसको देखने के लिए एक रशियन जोड़ा आया तो हैरान हो गए कि इतना खूबसूरत बना हुआ है। तो खामिन ने अपनी बीवी को कहा कि जब तुम मरोगी ना तो मैं भी तुम्हें एक ऐसा ताजमहल बनवा के दूंगा। तो वो चालाक लड़की थी, उसने आगे जवाब दिया कि इफ़ यू प्रॉमिस मी ए टूम हाफ एज बेटर, आई एम रेडी टू डाई टुमारो। अगर तुम इससे आधा मकबरा भी खूबसूरत बना के मुझे दो तो मैं कल मरने को तैयार हूँ। तो महवेश की मौत को देख के तो ऐसा ही लगता है कि अगर इतनी अच्छी मौत आनी होती है तो फिर तो हमें भी हर वक्त तैयार रहना चाहिए, किसी वक्त भी हम जाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपने अपने वक्त पर अच्छी मौत अता फरमाए और बुरी मौत से महफूज फरमाए और हम पर अपनी रहमत फरमाए। और जैसे वो एक अच्छी याद छोड़ कर गई, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उज़्कुरू महासिन मौताकुम, तुम अपने मरने वालों की खूबियाँ बयान किया करो। अब समझ नहीं आती कि हम महवेश की कैसी कैसी खूबियाँ बयान करें। खामिन को भी उसने खुश रखा हुआ था, घर को भी अच्छा चला रही थी और ईमहद का काम भी कर रही थी, और हमारे साथ तो मोहब्बत का उसका ऐसा ताल्लुक था कि जो मिसाली था। अल्लाह ताला उसके अहले खाना के लिए इस गम को आसान कर दे, और उसके अहले खाना मुबारकबाद के काबिल है कि बच्ची इतनी अच्छी मौत लेके दुनिया से चली गई। वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह फरमाते हैं वला नब्लुवन्नकुम बिशै मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबशरी साबरीन। मैं नौमान देखता हूँ कि उसके ऊपर अचानक इतना गम आ गया, उसके तीन बच्चे उसके पास थे छोटे छोटे, कोई केयर करने वाला भी नहीं था, और बीवी दुनिया से चली गई और वो अकेला था। मैं उसे बार बार फ़ोन करके तसल्ली देता था और दिल में सोचता था कि अल्लाह ने ऐसे ही लोगों के लिए फरमाया है वबशरी साबरीन, और सब्र करने वालों को बशारा दे दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए, और जो फौत हो गई हैं अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और उनको अपने कुर्ब के आला तरीन दराजात अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी जो फैमिली है उनको सब्र जमील अता फरमाए, उनकी बहनों को और उनके वालदैन को, और अल्लाह ताला सबको दीन के लिए ऐसी भरपूर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बी अल वहाब, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، جو بچیاں فوت ہوئیں ان کی مغفرت فرما، اور ان کے جو اللہ پیچھے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ، ان کے بچوں کی دیکھ بھال فرما اور ان کی اچھی تربیت فرما، اور ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، وہ تو نیک بچی تھی جو نیکی کر کے دنیا سے چلی گئی. اے اللہ، ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما، اور ہمیں بھی دین کی ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، رحمت کا معاملہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اور اے اللہ، ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا، تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما. اللہ، جو آپ نے ہمیں دنیا میں نعمتیں دی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. اے اللہ، جب ہم صحت کے حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بیماری کے عالم میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ، جب ہم جوانی کے عالم میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بڑھاپے میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ، ایک بوڑھا بیمار آپ کے سامنے ذات پھیلائے بیٹھا ہے، آپ سے آپ کی رحمت کا طلبگار ہے، مہربانی فرما دیجئے. اللہ، ہمارے اوپر ترس کھا لیجئے، ہمارے سفید بالوں پر رحم فرما دیجئے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور زندگی کے جو دن باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ایمہد کی جتنی باقی معلمات ہیں ان کو بھی ایسی مثالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو جذبے لگن کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اللہ تو جانتا ہے، ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر اور بدلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت. اے اللہ، جو قرآن مجید پڑھے گئے یا کلمہ شریف کا ورد کیا گیا اس کا ثواب مہوش کو پہنچا، اور قیامت کے دن اس کو نبی الاسلام کا قرب عطا فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. www.darsquran.com